गाइए गण पति जग बंदन शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज पदन विनायक सिद्धि सदन सिद्धि सदन गज पदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लाय कृपा सिंधु सुंदर सब मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि विद्या वारिधि विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गण पति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी 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 मांगत तुलसी दास कर चोरे मांगत तुलसी मागत तुलसी सास कर चोरे बस हो राम सिया मानस मोरे बस ही राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन ಸುವರ ಭವಾನಿ ಕೆ ನಂದ ಗಾಯ ಗಣಪತಿ ಜಗವಂದನ
ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का हो स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किस की हो स्वामी शरण कहूँ मैं किस की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किस की ओ जय जगदी तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी ओ स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी आप पालन करता मैं मूरख फल कामी मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो कृपामय तुम सो मैं कुमारी ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी आप रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ाते ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाबो पाप हरो देवा ओ स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाबो श्रद्धा प्रेम बढ़ाबो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे
सदा सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रुण्वात्रेण हर्षित्तं समाश्रयेत्। ओम शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय श्रीकृष्णाय नमः। यथा लब्धोपचार मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि।
ओम
यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम
राजाधिराजाय सहस्रशायिने नमो
कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरोय शृणो ददातु। कुबेराय वेश्रणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम परमेश्यम राज्यम महाधिपतयमयंत मंद प्रियाय स्याद सर्वभौम सर्वायस अंतादा परार्ध प्रदवेश मंद परंताया एक राडिति तदपयेसि श्लोको अवगितो मरतः परविष्टार्वसंग्रे अविष्टस्य काम प्रविष्टे देवा सभा सदा। ओम विश्वदश सुरद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर तत्सात् संबाहुभ्याम दंपत्ति संपत्रेरदावा भूमिजन्नन्न देव एक सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पे विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। पुष्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोल श्रीमद भागवत महापुराण की जय। बोल वेद व्यास जी महाराज की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोल श्री परीक्षित जी महाराज।
कुटवंशी वाले की
जय।
श्री वेदव्यास जी महाराज की
जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की
जय।
श्री परीक्षित महाराज की
जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दैतये प्सितमन्वधाव वंदे महापुरुषते चरणारविन्दौ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणौ सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विरते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरःशास्तिता यं संपद्य जहात्यजा मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिः धर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां आनन्दधामनिचिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषाम् सुहृदाम् कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजम् पुरुषम् जरन्तम् सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम् तावद्बलात् स्फुहन्तर्हिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनमी परम दयालु परम कृपालु परब्रह्म परमात्म स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणार विंदों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर उपस्थित संत जन एवं भागवत भक्त जन भक्ति स्वरूप माताओं बहनों का हार्दिक सादराभिवादन कर आज श्रीमद् भागवत के पाक्षिक साप्ताहिक कथा का शुभारंभ श्रीमद् भागवत की धन्नानंद कंद निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार सदा सर्वदा निर्विकार सर्वाधार सर्वाकार दीनानाथ जगन्नाथ विश्वनाथ यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं संत महापुरुषों को कोटिशः प्रणाम कर समुपस्थित सभी भक्तिमान परम भागवतों एवं भक्ति स्वरूपा परम भागवती माताओं बहनों को सादराभिवादन कर आज श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ को अब 14 दिन में कहने के इस पवित्र पावन अनुष्ठान में भागवत के श्री गणेश भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा न तो आज तक कोई पूरी कह सकी है और न ही ये भागवत की पूरी महिमा कभी कही जा सकने वाली है। भगवान की ये महिमा अनंत है तो भागवत की महिमा भी अनंत है। भागवत और भगवान ये दो नहीं है। भगवान का स्वरूप हमारा भावमय स्वरूप होता है और भागवत का स्वरूप शब्दमय स्वरूप है। इसीलिए कल आपने सुना था कि तेनेयम वांग्मयी मूर्ति स्वरूपेणावतिष्ठते। ये भागवत शब्दमयी भगवान की साक्षात मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति को एक कलाकार बनाता है, लकड़ी की मूर्ति को एक कलाकार बनाता है, तांबे की मूर्ति को एक कलाकार बनाता है, उन कलाकारों की कलाओं का एक स्वरूप सामने आता है। परंतु भागवत के रूप में जो भगवान की मूर्ति है ये किसी कलाकार की कला मात्र नहीं है। भागवत कोई कल्पित विषय भी नहीं है, भागवत यथार्थ है, जीवन का यथार्थ। इसलिए भागवत को सुनने के लिए और भागवत को समझने के लिए भगवान में आस्था, भगवान में प्रेम, भगवान की भक्ति ये करना बहुत आवश्यक है। भगवान की आस्था के बिना भागवत सुन लेंगे, भगवान की आस्था के बिना भागवत का विवेचन कर देंगे, परंतु केवल शब्द और अर्थ में भागवत का निवास नहीं है, इसका एक अलौकिक तात्पर्य होता है। जैसे इत्र है, इत्र के अंदर तेल दिखता है, बाहर से वो तेल दिखता है, परंतु तेल होते हुए भी उसमें एक अलौकिक सुगंध होती है। वो सुगंध नेत्र से मालूम नहीं देती, वो कान से मालूम नहीं देती, वो सुगंध केवल नाक से ही ग्रहण की जा सकती है। इसी प्रकार से इस भाव में श्री विग्रह का दर्शन भावराज्य के द्वारा ही संभव है। तो भागवत केवल नीरी पोथी नहीं है, भागवत भगवान का कलेवर है। आइए आप हम सभी उस परम प्रभु का बहुत बहुत आभार माने जिन्होंने मानव शरीर में हम लोगों को भागवत में बैठने का लिए मौका दिया, जिसके यद्यपि हम अधिकारी नहीं थे, परंतु भगवान ने ये मौका दिया है। हमारी अनधिकारिता पर भगवान ने एक बार आंख बंद कर ली है, भगवान ने हमारे साथ पक्षपात किया है। उस कृपालु की कृपालुता की ओर देखें, जिन्होंने हमको कहां कहां से फंसे हुए को निकाल निकाल कर इस भागवत के गोकुल धाम में लाकर बैठाया है। आओ उसी प्रभु के गुणगान को, जैसा वेदव्यास जी ने, सुखदेव जी महाराज ने लिखा और गाया है, अनेक सत्पुरुषों ने उसे सुना है, उसी भागवत को इस कलिकाल में अपने लोग भी सुनकर के अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर सके। भागवत का शुभारंभ करते हुए बोलते हैं कि जन्मादियस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। देखो इस श्लोक को बोलते हैं, ये शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसमें जहां थोड़ा थोड़ा सा विराम आता है वहां एक 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 करके विलक्षण भाव पैदा होते हैं। उन भावों के लिए ये मंगलाचरण का श्लोक है। आपके हमारे सबके हृदय में एक भाव है कि श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का पूजक ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना इसमें विशेषता से बताई है जो बिल्कुल सत्य है। आपको भागवत में ऐसा कोई सा भी स्कंद नहीं मिलेगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम आप नहीं देख पाएंगे। हर स्कंद में कृष्ण का नाम मिलेगा। लेकिन जब मंगलाचरण करने का समय आया तो हमारे वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि भाई सत्यम परम धीमहि, मैं परम तत्व जो सत्य है उसका ध्यान करता हूं। ध्यान करता हूं नहीं कहा, धीमहि। धीमहि ये शब्द है ना, ये वैदिक शब्द है। वैदिक शब्द में भी जैसे कल लौकिक शब्द में बात आया कि श्री कृष्णाय वयम नुमः है, ये नुमः बहुवचन दिया, ऐसे ही धीमहि शब्द भी बहुवचन का शब्द दिया। आओ हम सब मिलकर के ध्यान करें कि बाबा क्या ध्यान करें, कृष्ण का ध्यान करें कि राम का ध्यान करें कि भाई यदि मैं कृष्ण के ध्यान के लिए कहूंगा तो संभवतः शैव हमारे पंडाल में नहीं आएंगे। यदि कह दें कि नहीं शिवम परम धीमहि तो कार्ष्णी बोल देंगे कि भागवत में तो कृष्ण ओतप्रोत है, छाए हुए हैं, आप ये मंगलाचरण के द्वारा शिवजी को बीच में लाकर हमारी आराधना को हमारी निष्ठा को डामाडोल क्यों करते हैं। अच्छा चलो हम रामम परम धीमहि कह देते हैं तो कह देते हैं कि रामम परम धीमहि बोलते हो तो आप रामायण सुनाओ, भागवत सुनाते हो तो कृष्णम परम धीमहि कहो। परंतु इसमें कृष्ण भगवान के अनुयायी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे शैव हैं उनको भी तो कल्याण करना है, वो शैव लोग कहेंगे कि भाई जब आपने भागवत को एक जगह सीमित कर दिया तो ठीक है हम हमारी शिवजी की पूजा करके कल्याण करेंगे, आपके भागवत में हम क्यों आए। हम तुमको एक नई बात बताते हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करें। क्यों शैवो कैसा लगेगा कि हम जरूर आएंगे भागवत में, क्यों कार्ष्णी हो आपके नहीं जरूर आएंगे, हमारा कृष्ण सत्य है। क्यों भाई रामस नहीं हो आप आओगे कि नहीं, जरूर आएंगे क्योंकि हम राम के उपासक हैं, जरूर आएंगे। अच्छा क्यों भाई निर्गुण सन्यासी हो आप आओगे कि नहीं, जरूर आएंगे। सत्यम परम धीमहि कहते ही भागवत की एक तरह से व्यापकता सिद्ध होती है। भागवत ने सभी की आराधना को कितना ऊंचा स्थान दिया है। सत्यम परम धीमहि। एक आर्य समाजी सज्जन थे, उनके मन में ये बात बैठी हुई थी कि भागवत तो केवल ये कृष्ण की बात करने वाले और रासलीला करने वाले यही लोग, भागवत में यही बातें आती होंगी और यही मानते होंगे, उसकी भागवत को बिना पढ़े यही श्रद्धा रही। ऐसा करते करते एक बार कोई देव योग से ऐसा ही काम पड़ा कि जहां उसका मकान था उस मकान के पास एक बहुत बड़ी जगह, वहीं पर भागवत का आयोजन हुआ। तो उसको अब वो क्या करे, वो मना थोड़ी कर सकता है कि भाई भागवत का आयोजन मत करो, क्यों उसकी जमीन नहीं। तो उसके मन में आए कि हम लोग आज तक सुनते ही रहे कि भागवत में तो केवल कृष्ण का और गोपियों का नाच गान है, और क्या हो सकता है, भागवत तो क्या है, लेकिन चलो अपने पास में हो रही सुने देखे। तो वो अपने झरोखे में बैठ गया और भागवत सुनने लगा। लेकिन जिस वक्त इसने पहला मंगलाचरण सुना, मंगलाचरण का जब श्लोक और भावार्थ ये सब वो सुनने लगा, तो उसके मन पर असर पड़ा कि भागवत केवल कृष्ण का ही कुछ वर्णन करता हो, ऐसी बात लग तो नहीं रही है मंगलाचरण में। मंगलाचरण भी इसका लंबा चौड़ा ही था। तो उसकी व्याख्या सुनते 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 उसने विचार किया कि नहीं, भागवत एक सुनने लायक ग्रंथ है। तो पहले दिन कथा सुनी, कोई अटपटी बात नहीं लगी, दूसरे दिन सुनी, तीसरे दिन सुनी, और चौथे दिन भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ, पांचवें दिन में नंदोत्सव हुआ, और उसके बाद जब रास पंचाध्यायी का विवेचन सुना तो उसने मन में आया अब तो जरूर कोई न कोई ये कृष्ण की ऐसी बातें कही जाएंगी जिसमें हम लोग सोचते हैं वो सही होगा। लेकिन जब रास पंचाध्यायी का विवेचन सुना तो उसको कहीं कोई गंध भी नहीं आई। फिर उसने छठे और सातवें दिन पूरी कथा सुनने के पश्चात अंत में उसने अपनी धारणा बदली और उसने स्वयं ने ये बात कही कि बिना किसी पुस्तक को पूरा पढ़े, बिना समझे, बिना उसके विषय में मन चाहा गलत निर्णय करना सबसे बड़ी भारी गलती है। उसकी भागवत में आस्था हुई और वो भागवत को पढ़ने लगा। फिर भी उसकी ज्ञान योग में विशेष आस्था थी, तो उसको हमने ज्ञान योग के विशेष विशेष स्थल बताए, समझाए कि ये स्थल आप पढ़ो। तो और शास्त्रों की अपेक्षा भागवत का जो ज्ञान योग था उसको और सरल और सरस लगा। तब उसने ये पूरी भागवत फिर पढ़ी, बड़े मन लगा करके पढ़ी, और फिर तो वो जहां भी भागवत होते ही वहां पर भागवत को बड़े प्रेम से सुनता और उसकी अपनी सोची समझी सब अटकलें उसकी कही की कही चली गई। तो बिना सोचे समझे हम लोग किसी भी ग्रंथ के बारे में कुछ भी निर्णय करके बैठ जाते हैं। इसलिए भागवत ने सोचा कि दुनिया में तो ऐसा होना संभव है और हुआ ही करता है, तो सत्यम परम धीमहि। हमारे व्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी है, साक्षात भगवान की ज्ञान कला ही अवतरित हुई है, उन्होंने सत्यम परम धीमहि कहकर के सबका आह्वान किया और सबको भागवत में बैठने के लिए एक अवकाश दिया, मौका दिया, अवसर दिया। परम सत्यम धीमहि। देखो सत्य के साथ परम लगा है वो। परम सत्यम माने परम सत्य बताते हैं हम आपको, परम सत्य, खास सत्य, मन चाहा सत्य नहीं। कोई कह देगा साहब हम तो संसार को सत्य मानते हैं, भोगों को सत्य मानते हैं, क्या अच्छी बात है, आप मानो भले ही, हम तो परम सत्य को चाहते हैं। बोलो परम सत्य है क्या? कि परम सत्य तो नहीं है, बस परम सत्यम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि हमारे व्यास जी को इतना प्रिय लगा कि एक बार लिखने से उनको तृप्ति नहीं हुई, जब ये भागवत का उपसंहार करेंगे अंतिम दिन, उस दिन भी ठीक ये का ये पद आएगा, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं कि कौन सा है जी वो परम सत्य, जरा उसकी व्याख्या करते हैं। देखो व्याख्या इसकी क्या करे कोई, इसकी व्याख्या जन्म भर तक करते ही चले जाओ। इस श्लोक के अच्छे अच्छे विद्वानों ने 108 अर्थ किए हैं, 108 अर्थ। अब एक दिन में एक अर्थ का यदि विवेचन किया जाए तो एक ही श्लोक के ऊपर बोलते रहो, भागवत कहीं रह जाएगी। परंतु इतना जरूर है कि इस श्लोक के ऊपर पूरी भागवत की कथा अवलंबित है। इस श्लोक को आप बहुत ध्यान से देखो। एक बात बताएं आपको कि जोधपुर के जो सत्संगी माताएं बहने भाई लोग हैं, इनकी एक विशेषता हमारे पर असर पड़ती है, एक बात का प्रभाव पड़ता है। आप लोग कोई बातें नहीं करते, कोई कचर पचर नहीं करते, कोई बीच में बाधा नहीं करते, आपकी अवधानता बनी रहे। ऐसे ही आप लोग जो है सन्मुख होते हुए सुनेंगे तो आपको, अब भाई भागवत तो एक अथाह सागर है, इस सागर में तो रत्न बिखरे पड़े हैं, हम लोगों की तो इतनी गति नहीं है कि हम इसके रत्न लाला करके और नए निकाल सके, इतनी योग्यता नहीं। अथाह सागर ही अथाह सागर, पानी का सागर तो फिर भी भाई इसमें कई अंत आता होगा, लेकिन भागवत रूपी सागर का कोई अंत नहीं है। हमारी छोटी सी बुद्धि है और कोई विशेष ज्ञान भी नहीं है, आप लोग तो क्या कर सकते हैं। पिछल जैसे कोई समुद्र के किनारे बैठा बैठा नहाले अपना, ऐसे अपने तो पास में किनारे पर बैठ रहे, इसके अंदर का था तो भाई बड़ा विचित्र है। परंतु पास में नहाते उसमें भी हमको पवित्रता मिलती है, नहाते हैं तो शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, अंदर तो जाने कितनी कितनी बात होगी। आप इसी प्रकार की शांति से सुनिए रही है। वो परम सत्य क्या है तो बताते हैं कि जन्माद यस्य यतोन्मयाद इतरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। यतो अस्य जन्मादि, सबसे पहला तो ये है, यत है अस्य जन्मादि, यत है माने जिस सत्य परब्रह्म परमात्मा से, जिस सत्य तत्व से, अभी परमात्मा भी नाम नहीं लिया, अभी तो सत्य नाम लिया है। एक व्यक्ति ने पूछा कि सत्य का अर्थ क्या है, सत्य का अर्थ होता है जो रहने वाला होता है उसका नाम सत्य है, जो रहता है, जो बात है जो है उसका नाम सत्य है। अब वो है क्या कि भाई अब है की व्याख्या कैसे करें, अब है की व्याख्या को कैसे बताएं कि है, तो नहीं को बताने से है का ज्ञान होगा। जब नहीं को बताया जाएगा तब है का ज्ञान होगा। है कोई ऐसी स्थूल चीज नहीं है कि यूं बता दे उसको ये है। नहीं का ज्ञान होने पर है का ज्ञान होगा। और एक बात और है कि हम लोगों को परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये कोई अज्ञान नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है। हम लोगों को संसार का यथार्थ ज्ञान नहीं है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। सोच लिया कि भाई ज्ञान नहीं, हम तो जानते नहीं है, तो भाई पुस्तक की बात नहीं जानते हम, भाषा नहीं जानते हम, और कुछ नहीं जानते, परंतु जो है हम कई चीजें ऐसी हैं जिनको जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। इसलिए शास्त्र में ज्ञानाभावम अज्ञानम नहीं कहा, ज्ञान का जो अभाव है उसका नाम अज्ञान नहीं है। तो किंचित ज्ञानम अज्ञानम, जिसके विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं थोड़ा सा नहीं जानते उसका नाम अज्ञान है। किंचित ज्ञानम अज्ञानम, तो जो ज्ञान का जो कैंचित क्य है, माने जो उसका कुछ पना है, वो कुछ पना होना और कुछ पना न होना, बस वो अज्ञान है। तो अब सत्य को बताते हैं कि भाई सत्य क्या है, कि यतो अस्य जन्मादि, यत है सत्यात अस्य जगत है जन्मादि, जन्म जन्मादि का अर्थ इसका जन्म, इसकी स्थिति और इसका प्रलय। जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति होती है और जिस परमात्मा से जगत की स्थिति देखी जाती है और जिस परमात्मा से इस जगत का प्रलय होता है, जिस परमात्मा में ये प्रलय होता है, वो सत्य है। सत्य वही है, सत्य बताया था ना कि एक आदमी ने पूछा कि सड़क कहाँ जाएगी, कहते सड़क नहीं जाएगी, आप ही जाओगे। सड़क अपनी जगह है, सड़क के ऊपर से जाएंगे आएंगे, पर सड़क अपनी जगह है। यदि सड़क न हो तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, हम लोग भी नहीं चल सकते। ऐसे ही जगत है, ये किससे पैदा होता, क्योंकि ये तो पैदा तो होता है, इसमें तो संदेह है नहीं कि पैदा होता दिखता है हमको। जो चीज पहले नहीं थी और बाद में दिखती है तो पैदा तो हुई है। अब जोधपुर जब से भी बसा है, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग माहित लोग हैं उनसे पूछो कि आपके बचपने में जोधपुर कैसा था, तो वो जो है अपने बचपन की बात बताएंगे कि जोधपुर ऐसा था भाई, आज तो ऐसा हो गया, ये बदल गया। तो ये बदल गया, इस बात को जिन्होंने देखा है तो वो ये बात जानते ही, चीज पैदा हो गई। तो जो पैदा होती है तो वो पहले नहीं थी, बाद में पैदा हुई, तो जिससे पैदा हुई है उसका नाम सत्य है। और किसमें दिखाई दे रही है वो सत्य है, और वो पैदा होने के बाद किसमें लीन होती है उसका नाम सत्य है। तो हमको तो पैदा होती हुई चीज दिखती है और हमको नष्ट होती हुई चीज दिखती है, पर किससे पैदा हुई और किसमें लीन हुई वो हमारे देखने में नहीं आता। कहते हैं देखने में स्वाभाविक नहीं आता, तभी तो देखने के लिए कहा जाता है। यदि वो देखने में आता, समझ में आता, तो फिर उसके लिए कहना ही नहीं बनता, फिर उसके लिए कौन कहता। इसलिए ये बात माननी चाहिए कि जिसकी उत्पत्ति, जिसकी स्थिति और जिसका प्रलय होता है वो स्वयं सत्य नहीं है, उसको जो पैदा करने वाला वो सत्य है। यतो अस्य जन्मादि, देखो जहां वेदांत सूत्र का, ब्रह्म सूत्र का आदि भाग पढ़ा जाता है, वहां पर पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यतो अस्य जन्मादि, अब हम आपके सामने ब्रह्म जिज्ञासा का विवेचन करते हैं। फिर कहा कि यतो अस्य जन्म, उसी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है। तो ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। ऐसे ही भागवत में पहली बात बताए कि भागवत आपको इधर उधर की नई नई बातें नहीं सुनाएगा, तो हंसा दिया, कुछ रुला दिया, कुछ भावुक बना दिया, ये नाटकबाजी भागवत में नहीं है। देखो भागवत में भी एक बात है कि भागवत है ये बहुत विचित्र हीरा है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो वास्तव में कुछ प्रबुद्ध है, सुबुद्ध है, जानने वाले हैं, विद्वान पुरुष है, उनकी परीक्षा भागवत में ही होती है। भागवत को कहना कोई मामूली बात नहीं है। आजकल तो भाई हमारे जैसे ही बैठ गए लेके भागवत, हम भागवत सुनाते हैं, अच्छी बात है भाई, सुना ही रहे आपके सामने, हम कोई भागवत कहने के अधिकारी थोड़े ही है। भागवत को कहने वाला बहुत प्राउड होना चाहिए, अनेकानेक शास्त्र का खूब विवेचन किया हुआ और दर्शनों को समझा हुआ होना चाहिए। ये जो पहला स्कंद जिसका अब अपना ये विवेचन चल रहा है, पहला स्कंद है भी अधिकारी स्कंद। भागवत को कौन कह सकता है, भागवत को कौन लिख सकता है, भागवत को कौन अभिव्यक्त कर सकता है, भागवत को कौन सुन सकता है? कहने वाला और सुनने वाला, इनमें भी एक योग्यता चाहिए। तो इसलिए और शास्त्रों में तो अधिकारिता और ढंग की है, लेकिन भागवत तो एक माँ है। माँ माँ देखो अपने कमाऊ पूत का भी पालन करती है, और कोई बेचारा बेटा पागल हो जाए तो भाई घर वाले और तो इतना उससे प्रेम मोहब्बत प्यार नहीं करते, माँ करती है। वो पागल है, वो कैसा भी है, माँ उसको रोटी खिलाएगी, माँ उसको दिलाएगी, माँ प्यार करेगी। माँ से पूछा भी जाए कि माँ आप प्रसन्न है कि बस मेरे बेटा है ये पागल हो गया, इस बात से मैं दुखी हूँ। परिवार में कोई दुखी नहीं होगा, माँ है वो एक पागल के लिए सबसे ज्यादा दुखी वही होगी। ऐसे ये भागवत एक माँ है, ये हम सबको समेटती है। भाई आप अपने को अनधिकारी मत मानो, आ जाओ मेरे यहाँ आ जाओ। तुम्हारा कहीं कोई बोध नहीं है, कहीं तुम्हारा प्रवेश नहीं है, कहीं तुम्हारा ज्ञान नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो मेरे यहाँ आ जाओ। हम सब के दुख के आंसू पोंछने वाला है ये भागवत, इतना उदार है। वो भागवत कहता है कि जिस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति आदि होते हैं वो परमात्मा सत्य है। परमात्मा का लक्षण नहीं किया है, जगत का लक्षण किया है कि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। तो हम भी जगत को किस रूप में देखते हैं, न तो जगत की उत्पत्ति देखते, न हम जगत की स्थिति देखते, न हम जगत का प्रलय देखते, हम तो केवल नाम और रूप देखते हैं और इंद्रियों के साथ इन पदार्थों का संबंध करके, और एक मन चाहे सुख में हम लोग उलझ जाते हैं, संसार को भी ठीक ढंग से नहीं देख पाते, और फिर हम कहते हैं परमात्मा क्या है बताओ, भगवान को किसने देखा है बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं बताओ, भगवान क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोसाइटी है उनकी बताओ। अरे भाई जो तुम्हारे सामने चीज है उसको तुमने अच्छी तरह से देख लिया क्या? जैसा ये संसार यथार्थ में है उसको वैसा तुमने समझ लिया? ऐसा यदि कोई हमसे कहे तो हमारी पोल निकल जाएगी। कह देते हैं सब कि सब मरने वाला है, सब हाँ मरने वाला है, हाँ मरने वाला है, हम हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, परंतु मरने वाला कहते कहते भी संसार से अपना आकर्षण नहीं हटाते। मरने वाला है फिर आकर्षण किस बात का? जब मालूम है कि एक दिन हमारा शरीर जाएगा, हम निश्चित रूप से यहाँ नहीं रहेंगे, फिर यहाँ के प्राणियों में और यहाँ के पदार्थों में मोह किस बात का? हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उसको भीतर से स्वीकार नहीं करते। देखो सांप है ना, सांप हमको देखो सबसे कोमल होता है सांप। सांप के यदि शरीर के हाथ लगे बहुत कोमल कोमल, बड़ा चिकना चिमना, बड़ा अच्छा लगता है, पर हम जानते हैं और भीतर से मानते हैं कि इसके अंदर जहर है, इसका यदि हाथ लगा लिया ये खा जाएगा और मर जाएंगे। सांप की कोमलता हमारे हृदय में असर नहीं करती, हमको प्रसन्न नहीं करती, क्योंकि हमें मालूम है कि सांप खा जाएगा। ऐसे ही क्या हम जगत को मरने वाला समझते हैं, परंतु इसमें से हमारा अपने इंद्रियों से संबंध करने का भाव क्या नष्ट होता है? नहीं हुआ। इसलिए भागवत कहते हैं सत्यम परम धीमहि। आओ आओ हम सत्य तत्व का चिंतन करें, ध्यान करें। ध्यान ध्यान करने का अर्थ है उससे हमारी नजदीकता बढ़नी चाहिए। एक तो ध्यान होता है हम लोग नेत्र बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो तो ध्यान है ही, सभी जानते हैं। पर ध्यान का असली अर्थ है कि हम उसके पास आए। वैसे ध्यान के लिए ध्येय चिंतायाम आता है कि ध्यान माने कि हम उसका चिंतन करें। चिंतन करने का अर्थ होता है कि मन का सहारा लो, बुद्धि का सहारा लो, इंद्रियों का सहारा लो, इनके सहारे बिना ध्यान नहीं होता, चिंतन नहीं होता। परंतु यहाँ जो ये बात बोलते हैं, वैदिक शब्द का प्रयोग किया कि धीमही, यहाँ धीमही का अर्थ है कि हम लोग जो है ये परमात्मा के सत्य के समीप आए, उस सत्य के पास में आए। और वैदिक शब्द देने का अर्थ क्या हुआ, लौकिक देखो भागवत में कहीं कहीं वैदिक शब्द आएंगे, बहुत कम जगह आएंगे। एक वैदिक संस्कृति होती है और एक ही हमारी लौकिक संस्कृत होती है। वैदिक शब्दों में और संस्कृत शब्दों में थोड़ा अंतर होता है। ये जो पुष्पांजलि वगैरह दी जाती है, बोलते हैं ना, इनमें अधिकांश शब्द वैदिक होते हैं और वैदिक शब्दों के बोलने में स्वर आदि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और लौकिक संस्कृत होती है, ये व्याकरण आदि के सूत्रों से पुष्ट हुई हुई, उसके नियम अलग होते हैं। तो ये जो वैदिक शब्द दिया धीमही, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बहुत बड़े गंभीर अर्थ को बताने वाली है कि आप आओ और उस सत्य के पास में बैठो, सत्य के निकट बैठो, आपको सत्य के पास बैठने का पूरा पूरा अधिकार है। और दूसरी बात यह भी है कि धीमही शब्द है ना, अब क्या बताएं, क्रियापद होते हैं वो परस्मै पद और आत्मै पद, दो पद होते हैं इनमें। जब क्रिया का फल दूसरे को मिले तब ये परस्मै पद होता है, और जब क्रिया का फल अपने को मिले तो आत्मै पद होता है। यहाँ धीमही शब्द आत्मै पद का दिया है, अर्थात इसका ध्यान करेंगे तो इस ध्यान का अंतिम फल अपने को मिलेगा, अपने को, ये अपने को मिलने वाला फल है, अर्थात इसका अंतिम कल्याण हमारा होगा। देखो परमात्मा तो कल्याण स्वरूप है, उनका तो कल्याण होने वाला नहीं, और शरीर आदि है ये तो एक जड़ चीज है, इनका भी कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण उसका होता है जिसमें कल्याण की इच्छा होती है, कल्याण की इच्छा जड़ में तो होती नहीं, और कल्याण की इच्छा चेतन में होती है। अब चेतन में दो चीज सामने आती है, एक परमात्मा आते हैं, एक जीवात्मा होते हैं। अब परमात्मा से कल्याण होगा कि जीवात्मा का कल्याण होगा, तो परमात्मा तो कल्याण स्वरूप है, और जब जीवात्मा का ही तो कल्याण बाकी रहा, तो वो जीवात्मा क्या चीज है कि आत्मा का शरीर आदि से जितना संबंध है उतना अंश वो जीव कहलाता है जीव। तो वो सत्य तत्व जिससे संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, यतः अस्य जन्मादि। और बताते हैं क्या कि अन्वय अर्थेषु अन्वयात्। एक चीज बता दी, अब दूसरी बात और बताते हैं सत्य की व्याख्या में कि अर्थेषु अन्वयात्। जितने पदार्थ हम लोगों को दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों में वो मिला हुआ है। देखो आप सबने, बड़े बूढ़े जो सज्जन है उन्होंने देखी होगी, और नए उम्र वाले लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन आप बड़े बूढ़े लोगों ने देखा, पुराने जमाने में माला होती थी, वो सूत की होती थी, सूत की माला, सूत से ही बनाई हुई, और वो ऐसे लगती थी जैसे मणि जो है बाहर से पिरोए हुए हो, नहीं, उसी सूत के बनाते थे, चीजें मिलती नहीं थी पहले, तो वो सूत को लेकर के उसमें गांठ लगा दी, एक मणिया बन गया, फिर थोड़ी दूर के ऊपर लगा दी, फिर तैरे ऐसे करते एक सूत की जो है माला बनाते थे, 108 उसमें गांठे लगा लगा करके बनाते थे। अब बताओ उस सूत की गांठ में, वो माला में जो है सूत है कि नहीं, कि सूत सब में है, सूत नहीं, वो सूत ही सूत है, माला तो केवल दिखती है। ऐसे ही अर्थेषु अन्वयात जितने पदार्थ हैं सब पदार्थों में वो परमात्मा रहते हैं, सब में रहते हैं, परंतु उसको हम जिस ढंग से देखना चाहते हैं ना इस ढंग से वो नहीं दिखते। हमारे देखने का ढंग ही और है। आज तक हमने जिस ढंग से देखा उसी ढंग से हम भगवान को देखना चाहते हैं, नहीं ऐसे नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए थोड़ी अलग से विचार की बात होगी। अब जैसे बताया इसमें हमको परमात्मा देखना है, भाई घड़ी है इसमें परमात्मा को देखना है साहब, अब इसमें परमात्मा बताओ हमको, अब इसको तोड़ेंगे करेंगे इसमें परमात्मा बताओ, तो भाई इसको चाहे आप तोड़ करके इसका पूरा चूरा कर लो आपको इसमें परमात्मा नहीं दिखेगा। हम कहते हैं कि ये बल्ली है, बल्ली इसके अंदर आग है, हमको आग बताओ, तो अब इसको कोई काटेगा, इसको जो है करोती से जो है इसको काट करके फिर कूट करके चूर्ण बनाएगा, खूब अंदर से दिखा देगा, अपने को तो आग नहीं दिखेगी, परे इसमें आग है, परंतु उस आग को प्रकट करने की एक विधि होती है। एक लकड़ी और रखो और दूसरी लकड़ी रखो और फिर उसका मंथन करो, मंथन करने से आग पैदा होगी, और दूध के अंदर घी है परंतु ये देखने से घी नहीं दिखेगा, उसकी एक अलग विधि है। ऐसे ही अर्थेषु अन्वयात सारे पदार्थों में वो परमात्मा अन्वित है, अन्वित माने संबंधित है, और संबंधित भी है और इतरतः माने उनसे अलग भी है, ये एक विशेष बात है। परमात्मा सब में रहते हैं और वे परमात्मा सबसे अलग भी रहते हैं, सब में रहना और सबसे अलग रहना ये कोई मामूली बात थोड़ी है, रहते हुए भी अलग रहना, सब में रहते हैं और सबसे अलग है। अलग कैसे हैं? अलग भाई ऐसे हैं कि जैसे आकाश के अंदर अपने को बदल दिखते हैं, बदल इन बदलों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के अंदर आकाश है कि नहीं बताओ, छोटे छोटे जो छिद्र हैं उनमें आकाश है, और आकाश को अचल बताया गया है, आकाश है ये अचल रहता है, अचल हिलता नहीं है आकाश, परंतु वो जो बदल है वो एक बदल बदल एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह आते जाते रहते हैं बदल, उन बदलों का आकाश भी आने जाने वाला सा दिखता है, और बदल थोड़ी देर में नष्ट हो जाते हैं, आकाश तो नष्ट नहीं होता। तो बदल के समान तो है संसार, और उसमें अन्वित कौन है कि जो है ये आकाश, ऐसे ही इसमें अन्वित है परमात्मा। तो जगत तो पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, लेकिन परमात्मा उसके साथ ज्यों के त्यों रहते हैं, उसमें कोई अलगाव नहीं होता। अभी जैसे सड़क का उदाहरण दिया तो सड़क के बिना गाड़ी चल नहीं सकती, सड़क से ही गाड़ी चलती है, पर गाड़ी और सड़क दोनों मिले हुए हैं क्या कि मिले हुए भी हैं और अलग भी है? यदि गाड़ी और सड़क दोनों मिले हुए न हो तो गाड़ी चल नहीं सकती, और यदि बिल्कुल मिले हुए हो चिप जाए एक जगह तो गाड़ी चल नहीं सकती। गाड़ी अलग होने से ही चल सकती है, गाड़ी अलग है और सड़क अलग है, पर गाड़ी में गति है सड़क में गति नहीं है, इसलिए गाड़ी आएगी जाएगी वो कभी लाल रंग की आएगी कभी सफेद रंग की आएगी, कभी दाहिनी ओर जाएगी कभी बाईं ओर जाएगी, सड़क अपनी जगह ज्यों का त्यों है। ऐसे अर्थेषु अभिज्ञ है और अर्थेषु इतरतः है, सारे पदार्थों में अन्वित भी है और सब पदार्थों से व्यतिरिक्त भी है। ये व्यतिरिक्त माने अलग है, अलग है भी और नहीं भी है, ये कोई भाषा अटपटी नहीं है, और अटपटी तो इसलिए है कि है और नहीं है कैसे बोलते हो, अरे किस दृष्टि से है वो दृष्टि किस प्रकार से है, लोगों की, हम लोगों की जो दृष्टियां होती है उस दृष्टि को लेकर बताते हैं कि है, और हम लोगों की दृष्टि से ही बताते हैं कि भाई नहीं है। जैसे माँ के साथ बच्चा गया और बच्चा गया देखो मैं माई, देखो माँ, वो देखो वो काग रहा, वो देखो कौआ है, कौआ कहा भाई कौआ है। अब 5-10 दिन के बाद में वो माँ कहेगी कि बच्चा देख भाई बेटा आज उस घर चले अपने। कौन से घर माँ? कि वो उस दिन तूने वो जो कौआ देखा था ना वो घर। अब आज वहां कौआ थोड़ा ही है, आज वहां कौआ नहीं है, लेकिन माँ ने उस बच्चे को उस घर का बोध कराने के लिए और घरों का निषेध करके उसका बोध करा दिया। ऐसे ही जो है सबका निषेध करने के बाद में जो रहता है, सबके न रहने पर भी जो रहता है उसका नाम सत्य है। पदार्थ है तब भी वो रहता है, और पदार्थ नहीं रहते तब भी वो रहता है, उसका नाम सत्य है। यह एक तरह से सगुण निराकार की व्याख्या हुई है। देखो भगवान के अनेक रूपों में खास 3 रूप है, एक तो निर्गुण निराकार रूप, एक सगुण निराकार रूप, एक सगुण साकार रूप। ये 3 खास भगवान के रूप, इनको लेकर के दर्शन चलता है। एक दर्शन कहेगा कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, वो उसकी सिद्धि में सब बात लिखेंगे। एक कहेंगे कि नहीं साहब, परमात्मा तो सगुण साकार होते हैं, सगुण साकार होते हैं तो पूजा भी होती है, मन भी लगता है, और उनकी कथाएं भी होती है, नाम भी लिया जाता है, कीर्तन भी किया जाता है, तो सगुण साकार ही श्रेष्ठ है। एक कहते हैं कि देखो भाई सगुण साकार में हमारे मन में संदेह पैदा हो जाते हैं कि भाई भगवान की मूर्तियां तो कोई मनुष्य बनाता है, तो मनुष्य मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई रहती है, उस मूर्ति से हम क्या बोले, क्या करें, कैसे उसकी उपासना और उसके भोग, उसका प्रसाद ही हमारे समझ में नहीं आता। तो वो कहते हैं हम तो सगुण निराकार मानने वाले हैं। सगुण और निराकार ऐसी अलग अलग उपासनाएं हैं, और सब उपासनाओं में कोई किसी पर कोई कमी दिखती हो तो उस कमी पर भी विचार किया गया है। कहते साहब हम मंदिर में क्यों जाएं, मंदिर में तो ईश्वर की बनाई हुई जो मूर्ति आप बताते हो वो तो ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति नहीं, वो तो मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति है, तो वहां जाकर वो मूर्ति हमारा क्या करेगी, न तो वो बोलती है, न वो खाती है, न वो चलती है, न वो फिरती है, न वो सुनती है, उसके पास में जाकर प्रार्थना करने से क्या होगा। ऐसे लोग बोलते हैं, उनको ये बताया जाता है कि वहां मंदिर के अंदर कभी भी मूर्ति की पूजा होती नहीं है, मंदिर में कभी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मूर्ति तो भगवान की उपासना का एक प्रतीक है, प्रतीक। हम हमारे अंतर्भाव को भगवान का प्रतीक मान करके उसमें वहां जाकर अभिव्यक्त करते हैं, अंतर्यामी सर्वव्यापी चेतन परमात्मा उसको सुनते हैं। तो यदि मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो हम कहां से उपासना का शुभारंभ करें, और हम हमारे अंतर्भाव को कैसे कहें, और किसके सामने कहें, किसके सामने कहें, बताओ। मंदिर में जाते हैं, भगवान का रूप देखते हैं, एक मन में भाव आता है कि ये भगवान है। अरे भगवान तो सब जगह, अरे सब जगह भगवान है तब इसमें भी तो भगवान ही है क्या? मूर्ति में सब जगह भगवान रहने वाले मूर्ति में नहीं है, मूर्ति में भी है। सब जगह जो भगवान है वही मूर्ति में है। अब बताओ सब जगह भगवान बोल तो दिया, लेकिन फिर मूर्ति का प्रसंग आए तो आप ये क्यों कहते हो कि भाई इस मूर्ति को क्यों मानते हो, ये तो ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, ये तो मनुष्य की बनाई हुई है। अरे मूर्ति का बाहरी रूप मनुष्य का बनाया हुआ हो सकता है, पर हमारे अंदर का जो भाव है, जिस भाव से हम इसको भगवान की मूर्ति मान रहे हैं, वो भाव किसी मनुष्य का बनाया हुआ थोड़ा ही है। और वो भगवान सब जगह व्यापक है, तो मूर्ति में भी है,
और मूर्ति में भी व्यापक है तो वो हमारी बात सुनते हैं। इसलिए भाई भगवान सुनते हैं। भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके, सब जगह मेरे कान है। जहां आप अपने मन की बात कहो वहां हम सुनने के लिए तैयार, जहां तुम हमारे चरणों की पूजा करो वहां हम तैयार। तो भाई मंदिर में हम गए, मंदिर में भगवान के चरणों की पूजा की तो भगवान के चरणों की पूजा हुई है। सब जगह भगवान है ना, इसीलिए मंदिर में जाते हैं हम। सब जगह भगवान है इसलिए कि सब जगह भगवान है, फिर क्यों जाते हो? अरे सब जगह है इसीलिए तो जाते हैं कि सब जगह है तो यहां भी है, सब जगह दिखते नहीं है यहां दिखते हैं इसलिए आए। तो हर उपासना के अंदर अपने अपने ठोस तर्क होते हैं। इसलिए ये जो भागवत है सबको लेकर के चला, निर्गुण निराकार वालों को लेकर के चला, सगुण निराकार वालों का पहले पहले विवेचन किया कि जन्मादि यस्य यतोन्मयादि इतरतः सार्थे स्वविज्ञ है, और बताया कि उस परमात्मा को हम कैसे देखें। पदार्थों को देखते हैं हम, देखो संसार का ज्ञान होता है इंद्रियों से, इंद्रियां नहीं हो तो संसार का ज्ञान नहीं हो, पक्की बात है। सूरदास जी हो उनसे कहा जाए कि टैणों का रंग कैसा है नहीं बता पाएंगे, और जो है जिसकी कोई चमड़ी में विकार हो तो वो चमड़ी का रोगी ये नहीं बता सकता कि ये चीज कोमल है कि कठोर है। ऐसे कान के अंदर कुछ विकलवता आ जाएगी तो वो नहीं बता कहेगा कि मैंने सुना कि नहीं सुना, वो नहीं सुना साहब, मैंने तो नहीं सुना, ऊंचा सुनाई देता है मुझे। इसका अर्थ ये है कि पदार्थों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान इंद्रियों के बिना नहीं होता। अब परमात्मा को हम किस इंद्रिय से देख सकते हैं कि भाई ऐसे देखना चाहोगे? नहीं, स्वराट। स्वराट माने स्वेनैव राजते इति स्वराट, वो अपने आप से ही अपने आप की चमक को लिए हुए है, अपने आप के प्रकाश को लिए हुए है, स्वयं प्रकाश है स्वराट। और अभिज्ञ, अभिज्ञ माने अभी समन्ता जानाति इति अभिज्ञ है, खूब अच्छी तरह से जानते हैं वो परमात्मा। संसार को भी जानते हैं, जीवों को भी जानते हैं, वो अपने को भी जानते हैं, सबको जानते हैं, हमारे कर्मों को जानते हैं। भगवान ने कहा है कि वेदाहम सम अतीतानि वर्तमानानि चार्जुन है और भविष्याणि च भूतानि। अर्जुन मैं सब प्राणियों के भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं। तो वो परमात्मा जैसा कोई जानने वाला मिलेगा नहीं, सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, अभिज्ञ है। और उनका जानना अपने आप से होता है, किसी इंद्रिय के अधीन होकर के भगवान न तो जानते हैं न वो जाने जा सकते हैं। भगवान नेत्र से नहीं जाने जा सकते, श्रोत्र से नहीं जाने जा सकते, भगवान नासिका से नहीं जाने जा सकते, रसना से नहीं जाने जा सकते, और चमड़ी से नहीं जाने जा सकते, भगवान नहीं जाने जा सकते, इनका विषय नहीं है, निर्विषय है परमात्मा। इसीलिए भागवत में एक जगह आएगा कपिल भगवान के उपदेश में कि मन को निर्विषय करोगे तो निर्विषय परमात्मा का बोध होगा। मन को निर्विषय करो, हमारे अंदर जो विषय शक्ति भरी पड़ी है ये विषय शक्ति जब मिटती है तो परमात्मा का बोध होगा। तो अभिज्ञ स्वराट, और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय है। अब देखो वे भगवान अब आए सगुण साकार में, क्योंकि वे परमात्मा क्या करते हैं कि तेने 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 क्या हुआ, ये तेने है तन तनु विस्तारे। वास्तव में तो यहां तताने होना चाहिए था, आप परस्मी पद आता है तनु विस्तारे में, यहां तेने शब्द दिया। तेने तेने का मतलब है कि उस परमात्मा ने विस्तृत किया, ज्ञान का विस्तार किया उन्होंने। तेने माने विस्तारे या मास है, आत्मने पद का लिट लकार का एक वचन दिया, तेने तेनाते तेनिरे। तो तेने माने उस परमात्मा ने आदि कवये, आदि कवि कौन? ब्रह्मा जी। उनके लिए ब्रह्म तेने माने भागवत का विस्तार किया। अब ये क्या हुआ? सगुण साकार की लीला हुई। भगवान बोलेंगे, ब्रह्मा जी सुनेंगे, तो ये सगुण साकार की बात हुई। बोलना सुनना चलना, जहां उसमें बोलना चालने का निषेध किया जाता है परमात्मा में, वही परमात्मा स्वयं बोलने की शक्ति को लेकर बोलते हैं, वे ही परमात्मा सुनाने की शक्ति को लेकर सुनाते हैं। वो परमात्मा बुद्धि से अलग है, लेकिन वो बुद्धि को लेकर अगले की बुद्धि के अंदर ज्ञान देते हैं। ये क्या है? ये उनकी अलौकिक दिव्य लीला होती है। लीला जैसे राजा होता है, राजा अपने महल के अंदर वो बच्चों से खेलता है, राजा छोटे छोटे अपने पोते हैं उनके साथ खेलता है, तो कहकर के आवाज़ हो, देखो मैं तुम्हारी घोड़ी हूँ, तुम मेरे जो बैठे हो, आओ बैठो बैठो। तो राजा गुडाले गुडाले चलता है, उसका पोता उसके पीठ पर बैठा है, अब हमको चलाओ, ऐसे ऐसे करो। तो वो बच्चा बोलता रहता है और वो राजा राजी होता है और उसको ढोए ढोए फिरता है। परंतु वही राजा जब सभा में बैठता है, तब क्या वो ऐसा मानता है या कहता है क्या कि भाई मैं घोड़ा हूं? ऐसा बोलेगा तो लोग कहेंगे राजा का दिमाग खराब हो गया, ये सभा की शब्दावली नहीं है उसकी। लेकिन वही राजा अपने परिवार में ये बोलता था पोतों के सामने। क्यों ये लीला है? उसने प्रेम के लिए, खिलाने के लिए, बच्चों को आनंदित करने के लिए उसने ऐसी बात कही। ऐसे ही भगवान सब इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों के विषय नहीं है, पर वे ही भगवान लोगों के कल्याण के लिए ये शरीर भी धारण करते हैं, इंद्रियां भी धारण करते हैं, धाम में भी आते हैं और आकर के लीला करते हैं। उस लीला में भगवान की सर्वोत्तम लीला क्या है कि उन्होंने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया। ऐसी भागवत सुनाई ब्रह्मा जी को कि देखो बेटा, तुम संसार को बना तो रहे हो, पर इस बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो तुम भागवत सुनोगे तो पता चलेगा, तो महाराज सुना दो। तो फिर भागवत सुनाया। भागवत क्यों सुनाया? कि ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कोई आदमी छोटा सा काम करता है उसको अभिमान हो जाता है, छोटा सा काम करे अभिमान हो जाता है, और मुझे आप सृष्टि रूप कर्म में लगा रहे हो, मुझे अभिमान हो जाएगा, और मुझे अभिमान हो जाएगा तो महाराज मैं कहां जाऊंगा फिर? इसलिए आप मुझे सृष्टि कर्म में लगाने से पहले ऐसा ज्ञान दीजिए जिसमें अभिमान न हो। तब भगवान ने उनको भागवत सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। तो ये भगवान की सगुण साकार लीला है। तो तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म का अर्थ भागवत, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय मन अपने हृदय से कही, संकल्प में लेकर के कही, भगवान की कृपा हुई। कृपा देखो, जन्माद यस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वरात, इसमें पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा, नहीं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये स्कंद हो गया। इन स्कंदों में यही बात आएगी, जन्माद यस्य यतोन्वयाद, और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, यहाँ ये छठा सातवां ये स्कंद आते हैं, छठा सातवां आठवां, उनमें ये कथाएं आती, भगवान की कृपाओं की कथा आती है। छठा स्कंद तो भगवान का कृपा का नाम से ही भरा हुआ है। तो भगवान ने कृपा करके भागवत सुनाई हो, भगवान ने कोई ब्रह्मा जी को पुरस्कृत करने के लिए कोई बहुत बड़ा ब्रह्मा जी ने काम कर दिया हो और उससे भगवान कोई उनकी तपस्या से राजी हो, ये बात नहीं है। भगवान तो अपने ही राजी होने का स्वभाव है उनका, कृपा करने का स्वभाव है, उसके कारण से भगवान ने ये भागवत सुनाई। ये हो गई सगुण साकार की लीला। मुह्यंती यत सूर्य, इसी भागवत के अंदर बड़े बड़े विद्वान पुरुष इसमें मोहित हो जाते हैं, इसका वास्तविक अर्थ प्रयोजन क्या है ये यहाँ चक्कर खा जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान पुरुष। अब बताते हैं निर्गुण निराकार की, कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ओहो, माने तेजो वारि मृणाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, एक परमात्मा ही परमात्मा है, जगत तो केवल झूठा प्रतीत होता है हमको प्रतीत। देखो एक संत थे, वो हर चीज को ब्रह्म बोलते थे, मकान को भी ब्रह्म बोलते थे, ब्रह्म ये ब्रह्म है, पुस्तक को भी बोले ये ब्रह्म है। अब ऐसा बोलेंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा, तो वो क्या करते कि बस ये इदम पुस्तकम ब्रह्म है, ये पुस्तक ब्रह्म है, ये मकान ब्रह्म है, कहते हैं वो कलम ब्रह्म लाओ देखे, कलम ब्रह्म माने कलम लाओ देखे, हर चीज के सामने आगे ब्रह्म लगा दे, ब्रह्म घड़ी ब्रह्म माने सब कुछ ब्रह्म ही है, ये घड़ी इसका रूप है, ये चश्मा है इसका रूप है, चश्मा ये चश्मा है, ये इसके आगे ब्रह्म लगा दिया, चश्मा ब्रह्म है, चश्मा ब्रह्म लाओ, पुस्तक ब्रह्म लाओ, और उस मकान ब्रह्म में जाना है, भोजन ब्रह्म करना है, जल ब्रह्म पीना है, कपड़ा ब्रह्म पहनना है, अब जो उनको जो चीज चाहिए जो कुछ करना हो उसके आगे वो ब्रह्म लगा दे, ब्रह्म लकड़ी ब्रह्म लाओ, चलने के लिए लकड़ी ब्रह्म लाओ, वो ब्रह्म लगा देते। तो माने सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ परब्रह्म ही परब्रह्म है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, अर्थात सूर्य की किरणों में जैसे जल की भ्रांति हमको गलती से हो रही है, ऐसे ही ब्रह्म के अंदर ये जगत की भ्रांति हमको गलती से हो रही है। ये संसार मेरा है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, शरीर मेरा है, धन मेरा है, पद मेरा है, ये क्या है, ये भ्रांति है भ्रांति। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय है, तेजो माने सूर्य की किरणों में, वारि वारि माने जल, सूर्य की किरणों में जैसे जल की भ्रांति होती है, और मृदाम तेज है, और जैसे मृत्सु तेज है, और जैसे मिट्टी के अंदर तेज की भ्रांति, जैसे अभी उधर वो कार खड़ी है, अभी तो सूर्य भगवान बदल में आ गए, जिस समय बदल में नहीं थे, खुल लेते तो वहां का छिलका यहाँ पड़ता था, यहाँ उस कार का छिलका यहाँ पड़ता तो भाई ऐसे लगा वो वहां से छिलका पड़ रहा है, छिलका काएगा सूर्य का, सूर्य का थोड़ी छिलका है वो, और सूर्य का ही है भी, छिलका तो कांच का पड़ रहा है, पर कांच का जो है छिलका सूर्य के साथ मिल गया तो हमारे आंखों में सीधा पड़ गया, वो कांच का हो तो अब क्यों नहीं जो है पलका पड़े, तो कांच बनता है वो मिट्टी का, तो मिट्टी में जैसे सूर्य की भ्रांति हो गई, सूर्य में जैसे जल की भ्रांति हो गई, ऐसे इस जगत के अंदर जो है इस परमात्मा के अंदर जगत की भ्रांति हो गई, जगत नहीं है परमात्मा है, जगत को केवल हमको बहम से दिखता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि बिल्कुल झूठी है, कि कैसे झूठी है साहब, कि झूठी इसलिए है कि ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं है, जैसी सृष्टि दिखती है वैसी है नहीं, हमको दिखती कैसी है कि है लेकिन वो बदल जाती है। महाराज जी बोला करते थे, आपने खूब सुना है कि इस अंगुली को हम एक बार देखे दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो बदल गया, वो बदल गया। एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने अपने सत्संग के अंदर वो गए तो वहां सत्संग करा रहे थे शरणानंद जी महाराज, उन्होंने कहा बोलो भाई कोई बात पूछो हम, तो एक एक वकील ने बात पूछी कि महाराज मेरे बेटे से मुंह नहीं हटता है। तुम्हारे बेटे से मुंह नहीं हटता है? हाँ महाराज। कितने वर्ष का है? कि वो 18 वर्ष का है। कहाँ रहता है? वो जोर से बोलते थे बाबा जी शरणानंद जी जोर से, कहाँ रहता है? कि वो इलाहाबाद पढ़ता है। तो इलाहाबाद में पढ़ता है वो बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा है ही नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं है वो। उनको बहुत बुरा लगा कि महाराज मेरा बेटा है वो, आप ऐसा कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं है। जोर से बोले वो बाबा, तुम्हारा बेटा है ही नहीं। तो उनको और भी बुरा लगा कि मेरा पुत्र है ऐसे बोलते हो। नहीं नहीं मैं, मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा नहीं है। तो कहा कि महाराज आपको पता नहीं है, आप जिस ढंग से बोल रहे हैं ये तो एक तरह से बहुत जो है हमको बुरा लग रहा है आप बोल रहे हो। बुरा लगा तो लगना चाहिए तुमको बुरा, तुम्हारा बेटा है नहीं, बुरा लगता है तो लगेगा, लगना चाहिए। वो पीछे ही पड़ गए, तुम्हारा बेटा है ही नहीं। तब उसने कहा महाराज आप कैसे बोलते हो? तब बाबा जी ने देखा कि आदमी बुरा मान गया, तो बाबा जी ने कहा देखो वो तुम जो है शारीरिक शास्त्र पढ़े हो कि नहीं, शरीर संबंधी विज्ञान जानते हो कि नहीं? वकील साहब कि साहब शरीर संबंधी क्या विज्ञान, हम विशेष नहीं जानते कि आप तो इतने बड़े वकील हो, आपको तो सब बात मालूम होनी चाहिए कि शरीर पे 7 वर्ष के बाद शरीर का सारा स्वरूप बदल जाता है। ये हमारा खून जो 7 वर्ष पहले था, वो 7 वर्ष पहले आप किसी डॉक्टर से दिखा लो, आप अपने खून की टेस्ट करवाओ और 7 वर्ष के बाद खून की टेस्ट करवाओ, आपको बहुत बदलाव मिलेगा। इसी शरीर में बनता है, इसी शरीर के अंदर फिल्टर होता है और इसी शरीर से खून से विजाती चीज निकलती है और खून भी जो है शरीर में से कम होता होता निकलता है, नया खून बनता है। तो 7 वर्ष में ये खून बिल्कुल बाहर शरीर से बाहर निकल जाता है, वो रहता ही नहीं है। तो उसका खून वो नहीं, उसकी हड्डियां वो नहीं, वो आपका बेटा कैसे हुआ? आप निर्दाहक मोह करते हो, आपका बेटा है ही नहीं और आप कहते हो मेरा बेटा है। 7 वर्ष में तो बदल गया वो, कितने वर्ष का बताया गया? 18 वर्ष का बताया, पढ़ रहा है वो 18 वर्ष का बदल गया। तो वो आपके वहां 7, 7, 2, 14 ढाई बार तो बदल गया वो, क्या और कितना आप सुनोगे उसके विषय में? ढाई बार वो बदल गया, वो ढाई बार नया जन्म हो गया। दाहक तुम अपना बेटा, अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना पिता, अपना ये सब बदलता है। ऐसा बदलता है कि जिस समय में आप पिता बने थे उस समय के शरीर को लेकर आज 18 वर्ष के बाद बिल्कुल बदल गया, वो आपका बेटा रहा ही नहीं और आप उसके बाप भी नहीं रहे। न आप बाप रहे, न बेटा रहे, न आप पति रहे, न आप पत्नी रहे। पत्नी का शरीर बदल गया, आपका शरीर बदल गया। आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया था, उसके बाद 7 वर्ष के बाद वो पत्नी का शरीर एकदम बदल गया और पति का शरीर एकदम बदल गया। क्यों आप इसमें आपस के संबंधों में उलझते हो? होश आया उनको, होश आया। अरे नाहक हम संबंध करके, आसक्ति करके, बिना मतलब आसक्ति करते हो आप, ऐसा कहा संतों ने। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये सारी की सारी सृष्टि वास्तव में मृषा माने झूठ है। नाहक हम इसको सत्य मान मान करके चल रहे हैं, वास्तव में झूठी है और सत्य मानते हैं हम, उसका क्या इलाज है? देखो जो आदमी सोया हुआ है उसको तो जगा सकते हैं, लेकिन जो जो जागता हुआ सो रहा है उसको आप जगा सकते हो क्या? जान करके यूं लेटा हुआ है, जागा हुआ, जगे हुए को सोया हुआ समझ करके उसको कोई जगाओ तो भाई नहीं जग सकता हो, सोए हुए को जगा सकते हैं। तो बहुत गहराई से देखने के लिए बोलते हैं कि सृष्टि को जरा गहराई से देखो कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये बिल्कुल झूठा है। और तुम्हारे ऊपर जो काम क्रोध लोभ आदि का आवरण आया वो कैसा है? वो कैसा है कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, माने वो एक तरह से धुंध के समान अज्ञान है, धुंध के समान। एक तो होती है काली रात, एक होती है धुंध। जोधपुर में तो हवाई अड्डा है, आप हवाई जहाज वालों से पूछ लो हवाई अड्डे पर, किसी भी जो है जानकार व्यक्ति से, कि आपको जो है धंवर के अंदर हवाई जहाज चलाने में मुश्किल होती है, अंधेरे में मुश्किल होती है। वो कहते अंधेरे में मुश्किल नहीं होती, धुंवर में मुश्किल होती है। जब धंवर रहती है तो हवाई जहाज बहुत विलंब से उड़ते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक उड़ते नहीं हवाई जहाज की धंवर है। धंवर में पता ही नहीं चलता कितनी लाइट कर दो, फॉक्स कर दो, पता नहीं चलता। और जो अंधकार होता है उसमें पता चलता है, धंवर में पता नहीं चलता है। तो हमारे पर इन विकारों की एक धंवर आई हुई है, धंवर। कितना ही सुन लेते हैं, कितना ही सुना देते हैं, कितना ही समझ लेते हैं, कितना ही समझा देते हैं, दूसरों की शंकाओं का समाधान कर देते हैं, बड़ी युक्तियां देते हैं हम लोग, परंतु स्वयं वही के वही रहते हैं। आप बाबा जी बैंगन खावे, दूसरा ने प्रमोद बतावे कि बैंगन नहीं खाना भाई, बैंगन खाने से शरीर में अपच होता है, बैंगन के बीज अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, और वही बाबा जी बैठे आराम से बैंगन का साग खा रहे हैं। आप कैसे खा रहे हो बाबा जी? कहते तो हमारी प्राइवेट लाइफ है, हम चाहे बैंगन खाओ, दूसरों को तो हम नहीं बताते, ये हमारी प्राइवेट लाइफ है। तो भाई ये क्या, ये धुंध है, धुंध। ये ज्ञान काम का नहीं है। धुंवर में जैसे प्रकाश काम नहीं करता, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार जिनके हृदय में भरे पड़े हैं, उनके वहां वो ज्ञान काम नहीं करता। ये जो सत्य रूप जो परमात्मा जिसके शरण में जाने के लिए हम बोलते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये अपने स्वयं के प्रकाश से इस कोहरे को छटे हुए रखते हैं, वहां पर कोहरा लगता ही नहीं है। ये कोहरा कहाँ होता है? अध किचरे में होता है, ऊपर जो है सूर्य के पास में कभी कोहरा नहीं आता, सूर्य के पास कभी अंधकार भी नहीं आता। एक बार ये अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से कहने लगा कि महाराज ये सूर्य है, ये हमको बहुत तंग करते हैं, हमको भगा देते हैं। तो अच्छा, हाँ महाराज, हम क्या करें, तो सूर्य मानते नहीं, हमको भगा देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य से कहा, सूर्य जी आप ये क्या करते हो, ये कहते हो कि, ये कहता है कि हमको भगा देते। सूर्य का महाराज, मैंने तो आज तक अंधकार को देखा भी नहीं, कभी नहीं देखा मैंने, मैं इससे क्यों नाराज हूं, मैं जानता ही नहीं अंधकार क्या चीज है, कभी सामने वो आया नहीं, कभी मैं उसके सामने रहा नहीं। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम है, कहते हैं कि भाई वो जो परब्रह्म परमात्मा है उसके ऊपर ये कुहक कभी, कोहरा कभी आता ही नहीं है। ये कोहरा हम लोगों पर आता है, वो भी कब तक आता है? जब तक हम अपने स्वयं के तेज का उपयोग नहीं करते तब तक आता है। हम अपने स्वयं के तेज का, अपने स्वयं के ज्ञान का, अपने आत्मज्ञान का, आत्मबोध का उपयोग करने लग जाए तो भाई फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का जो कोहरा है वो कोहरा कहीं का कहीं छट जाता है। सर्दियों में कोहरे आते हैं, ऐसा लगता है कि आज तो सारे दिन ऐसा ही रहेगा, और 5 मिनट 10 मिनट में सब कोहरा समाप्त हो जाता है, जब समाप्त होने पर होता है एकदम ऐसी जो है वह हवा सी चलती है, कोहरा एकदम खत्म, सूर्य वैसा ही जो है प्रचंड रूप से चमकता है। तो भाई वो सत्य तत्व ऐसा है कि अपने तेज से सब कोहरों को समाप्त कर देता है। ऐसे सत्य तत्व को आप हम सभी स्वीकार करें, उस सत्य के पास में हम लोग बैठे। एक बात, दूसरी बात बताई जा रही है कि श्रीमद् भागवत में जो आप सुनने जा रहे हैं कि एक धर्म है प्रौज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणम सताम, अच्छे अच्छे महात्मा लोगों का इसमें धर्म बताया है। कैसे महात्मा है कि निर्मत सराणा, ये निर्मत्सर शब्द दिया, निर्मत्सर माने जिसमें, जिन महात्मा में मत्सर दोष भी नहीं है, मत्सर दोष। देखो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इस दोष का ज्ञान तो प्राय 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 सभी को ही हो जाता है, ये हमारे में दोष है साहब। लेकिन ये मात्सरी दोष एक ऐसा है कि इसका साधन भजन करते करते बिना सत्संग के ये मात्सरी दोष समझ में नहीं आता है। ये मात्सरी दोष है क्या? ये मात्सरी दोष ऐसा है भाई कि जैसे एक तो हम है, हम कथा करते हैं और व्याख्यान देते हैं, एक आप भी कथा करते हैं और व्याख्यान देते हैं। अब आपकी तो प्रसिद्धि ज्यादा हो जाए और आपको लोग ज्यादा मानने लगे और मेरे को कम माने, तो मेरे मन में एक ही विचार आएगा कि मानो भले ही कम ज्यादा, ये लोग बड़े मूर्खता करते हैं, मेरे से ज्यादा थोड़ी इनको पता है। मैं ज्यादा जानता हूं। और इनकी जो ज्यादा प्रसिद्धि हो रही है, ये मेरे मन में मीठी मीठी एक खटक पैदा करती, खटक। वो जो खटक पैदा होती है उसका नाम मात्सरी दोष है। ये मात्सरी दोष बहुत आगे तक रहता है। एकांत में भी लोग, महात्मा लोग रहते हैं, वहां भी ये मात्सरी दोष रहता है। ऋषिकेश में किसी जमाने में, पुराने जमाने में संत रहते थे, दो संत थे, एक इधर रहते एक उधर रहते, दो अलग अलग। एक संत के पास में खूब लोग जाते थे, एक के पास कोई जाता ही नहीं था। उन संतों ने अब क्या बताया, संतों को बुरा लगा कि मेरे पास यहां कोई आते ही नहीं है, इसके पास इतने जाते हैं। तो रात में वो संत गए और उन्होंने पत्थर लेकर के, उन सो रहे थे, उस सोते के ऊपर पत्थर डाल दिया और वो मर गए रात में। क्या करें, ये ऐसा भयंकर दोष है। आप घर बार छोड़ के आए, आपने इतना सा भी दूसरे के उत्कर्ष को थोड़ा सा भी आप सह नहीं सके। पर क्या करें, वो सत्संग किए हुए नहीं थे, घर बार छोड़ दिया और कर दिया, एकांत रहने लगे। पर ये बातें बिना सत्संग के समझ में नहीं आती, संतों की ठोकर खाए बिना ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए भागवत में जगह जगह कहा है, संतों की वाणी में भी आता है कि भाई जब तक संतों की ठोकर नहीं खाओगे तब तक भाई पूरा बोध नहीं होगा। अब वो संत भी भाई अकाल पड़ गया, संत भी नहीं मिलते। संत वो होते हैं भाई जिनको हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं, किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है, आदर की भी अपेक्षा नहीं कि आप कम से कम हमारा आदर तो करो। ये भी जिनको हमसे अपेक्षा नहीं है, ऐसे बिल्कुल सर्वथा निष्काम पुरुष होते हैं। कल्याण तो उनके द्वारा होता है। हम लोगों का तो मन ऐसा लगता है, ये हमारे भगत है, ये भगत नहीं टूट जाए, ये भगत हमारे क्या समझेंगे, ये भगत है इनके ऊपर हमारे गलत असर न पड़ जाए, इसलिए हम जो है वो आपको खुशामदी में रह जाएंगे। तो भाई वास्तव में उनसे कल्याण होता नहीं है। ऊपर ऊपर का व्यवहार निभता है, उनसे कल्याण होता नहीं है। जिनको हमसे लेश मात्र भी गर्ज है वो हमारा कल्याण कैसे करेगा, ये तो सीधी सीधी बात है। कल्याण एक ऐसी चीज है कि जहां कोई कामना न हो, तो जिसके खुद के कामना है उनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, कैसे संभव है, नहीं होगा भाई। इसलिए बताया, महापुरुषों ने बताया कि ज्यों ज्यों समय खराब आ रहा है त्यों त्यों भाई भगवान को स्वीकार करो। गुरु भी मानो तो भगवान को मानो, और जो है आराध्य मानो तो भगवान का मानो, चित्र भी पूजो तो भगवान का चित्र पूजो, और कुछ भी मानो तो भगवान का मानो, निभ जाएगा। परंतु भाई यहां हम लोग क्या बताएं, ज्यादा कुछ कहेंगे तो ठीक भी नहीं लगता। जिससे हमको लेश मात्र भी अपेक्षा है कि भाई कम से कम हमारी पूजा तो ये करे, हमारे में भाव तो रखे, इतनी भी यदि अपेक्षा है, उस आदमी से कल्याण नहीं हो सकता, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याण उसी से ही होता है हमारे बिल्कुल अपेक्षा नहीं हो, कोई अपेक्षा नहीं हो। एक जो है सदगृहस्थ था, बहुत बड़ा अच्छा समझदार, लेकिन वो साधु का रूप नहीं बनाया, वो गृहस्थ में रहता, दुकान करता और जो है चीज वस्तु देता लेता, लेकिन एकदम निष्काम कर्म करने वाला बड़ा विलक्षण कर्मयोगी पुरुष था वो। एक बार राजा ने प्रजा में एक प्रश्न दिया कि इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है, तो करते 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 उसने प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो राजा ने उनको बुला करके और कहा कि भाई आपने हमारा प्रश्न दिया, प्रश्न का उत्तर दिया, हम बहुत प्रभावित हुए, अब आप कोई हमसे विशेष काम करा लो, कोई आप ऐसा काम बताओ हमको कि हम आपका कुछ काम करें। तो वो जो गृहस्थी संत था, वो गृहस्थी संत ही था, वो उस गृहस्थी संत ने उत्तर दिया कि महाराज यदि आप मेरा कहा हुआ कुछ कर सकते हो तो एक ही काम करना कि आप कभी हमको यहाँ राज दरबार में कभी मत बुलाना, कभी हमको यहाँ बुलाना नहीं, और पता नहीं चले कि आपका और मेरा कोई परिचय है, और मैं यदि किसी काम के लिए आपको कह भी दूं उस काम को आप बिल्कुल मत करना, उस काम को आप मत करना। अब भाई एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, ये मशीन है इधर मायू मायू की तरफ ही क्यों करते हो, इधर क्यों नहीं करते, घुमाते हो ना, पूरी घुमाते हैं ना, तब ठीक है। एक क्योंकि संख्या ज्यादा है तो इनकी संख्या ज्यादा है लेंगे, तो ऐसा नहीं भाई, मशीन है तो सब सब बैठे हैं, सब कर ले हो, ये फिर किसी का ही मत लो, हमारा भी मत ले हो। ये चीजें, ये उपकरण है, ये वास्तव में कथा के लिए बाधक चीज है, ये राजी हो जाते हैं कुछ हम भी और कुछ जो है आप लोग भी, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। पर भाई अब समय है, समय क्या करें, बोल सकते नहीं, लेकिन ये कोई सुखदेव जी महाराज की कभी कोई मिलेगी क्या अपने पास, कोई कैसेट नहीं मिलेगी, ये हृदय के द्वारा, हृदय की कैसेट के द्वारा ये सुनने लायक चीज है। तो निर्मत शरणम सताम जिनमें मात्सर्य दोष भी नहीं है, ऐसे ऐसे महापुरुषों का इसमें धर्म का समावेश भागवत में किया है। और प्रोज्जित केतव है, प्रोज्जित केतव माने केतव बोलते हैं कपट को, जहां पर प्रोज्जित किया माने छीन करके बाहर निकाला, छीन करके धक्का देके बाहर निकाल दिया, इतना यहां निष्कपटता का वर्णन है। कपट नाम की भागवत में कोई चीज है ही नहीं, ऐसे महापुरुषों का धर्म इसमें बताया है, जानने योग्य वस्तु का इसमें वर्णन हुआ है, और त्रिविध ताप का निवारण भागवत के सुनने से होता है, शारीरिक मानसिक और आदि दैविक। शरीर में बीमारियां होती है वो शारीरिक बीमारी, और जो है कई प्रकार का कोई दुख हो जाए और कुछ जाए, किसी के मरने जीने का दुख सुख हो जाए, ये सब होती है आध्यात्मिक बीमारी। हमारे विचारों में जो कमी आए, उस कमी से जो दुख होता है, वास्तव में दुख तो उसी से ही होता है, चाहे शरीर का ही हो, पर शरीर का दुख साफ दिखता है, साहब हमारे ये हड्डी टूट गई, इसका दुख है, दर्द है, तो ये शारीरिक जो है कष्ट है, ये आदि भौतिक कष्ट आता है, आध्यात्मिक कष्ट होता है, एक आदि दैविक कष्ट होता है, प्रकृति से कोई कष्ट आ जाए वो आदि दैविक है, अकाल पड़ गया कोई, कभी बिजली पड़ गई तो कभी क्या हो गया, ये आदि दैविक कष्ट होते हैं। और आध्यात्मिक कष्ट होते हैं जिसमें इंद्रियों की प्रधानता होती है, और कष्ट होता है वो आध्यात्मिक कष्ट कहलाता है। ये सब कष्ट भागवत से दूर होते हैं। और बताते हैं कि देखो श्रीमद् भागवत की रचना हो गई, अब क्या करें, कि कितनी बड़ी देखो प्रशंसा की बात है, भागवत की महिमा की बात है, कि सद्यो हृदयवरुद्यते कृति भी सुशूष भी, भागवत की कथा होगी और हम भागवत की कथा सुनेंगे, ओहो कब वो 26 तारीख आए, कब हम भागवत सुने, तब जब से आपने ये निश्चय किया ना, भागवत सुनी नहीं, अभी चालू ही नहीं, सुनेंगे कैसे, पर आपने विचार किया कि 26 तारीख से भागवत है, अपने को तो सुनना है, तो सुनने की इच्छा पैदा हुई, उसी समय में भगवान ने आकर आपके हृदय में आसन लगा लिया कि ये हृदय भागवत सुनेगा, इस हृदय में जाकर के तो निवास करना ही चाहिए। सद्यो हृदय अवरुद्यते, नहीं आकर के निवास, अवरुद्यते भगवान अवरुद्ध होते हैं, भगवान कहते हैं अरे भैया हमको यहां से निकाल मत देना, तुम जो है हमको हृदय से निकाल मत देना, इस हृदय में पड़े रहने देना उनको। सद्यो हृदि अवरुद्यते अत्र कृति भी सुश्रूष भी, ऐसा ये भागवत का महत्व है। तो उस भागवत के बनने पर और उस भागवत के मिल जाने पर और किसी शास्त्र की अब जरूरत ही नहीं रह पाती। सद्यो हृदयवरुद्यते कृति भी सुशूष भी तत्क्षणात्, भगवान तत्क्षण आकर विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान सुनने की इच्छा पर आकर विराजमान हो जाते हैं। जो सुन लेता है उसके लिए तो भाई भगवान जो है अब क्या करते हैं, उसके लिए तो भगवान स्वयं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं उसके लिए। अरे इसने तो भागवत सुनी है, अब इसका तो कल्याण मुझे हर हालत में करना ही है। कल्याण की जिम्मेवारी हमारे पर नहीं रहती, भगवान पर हो जाती है। भगवान पर जिम्मेवारी रहती है। देखो गजेंद्र मोक्ष में जब भगवान अपने मन की एक बात कहेंगे कि देखो इसकी कथा जो सुनेगा उसको मैं अंतिम समय में स्वयं अपनी स्मृति प्रदान करूंगा, ये कितनी बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। तो भागवत सुनने वाले को भगवान अपनी याद उसको मरते समय देते हैं कि मेरी याद आ जाए इसको, ऐसा उपाय रचेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि उसको भगवान की याद आ ही जाएगी। और मरते मरते भगवान की याद आ गई तो भाई सारा काम ठीक हो गया, सारी जिंदगी ठीक हो गई। अपने यहां मारवाड़ में देखो कुएं तो वैसे ही गहरे होते हैं, 300 फुट का कोई कुआ है और उसमें बाल्टी देगी और उसमें डोरी लगाई, बाल्टी नीचे गई, जाते 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 300 फुट है तो 299 फुट जो है पानी वो रस्सी नीचे चली गई, एक फुट बाकी बची, एक फुट। अब एक फुट यदि बाकी बची है तो अब एक फुट तो अपने हाथ में उसको लेकर के पूरे 399 फुट वाली डोरी को हम लोग कुएं से निकाल सकते हैं, परंतु वो भी यदि चली जाए तो भी हमारे हाथ की बात नहीं। ऐसे ही जीवन का अंतिम श्वास है कि अब श्वास के बाद दूसरा सांस आने वाला नहीं है, उस श्वास में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो सारी जिंदगी उसकी स्मरण में मानी जाएगी, कोई बात नहीं, सब जिंदगी इसका स्मरण, भगवत स्मरण हो गया। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में इसका स्मरण हो गया। अंतिम समय का स्मरण बहुत कीमती है, इसलिए सेठ जी ने एक परम सेवा समिति खोली थी कलकत्ते में, परम सेवा समिति। एक तो सेवा समिति होती है, एक परम सेवा होती है। कोई भी आदमी मरने वाला हो उसके पास में जाकर उसको नाम सुनाना, भगवान का नाम सुनाना और भगवान का चित्र दिखाना उसको। सेठ जी के जमाने में गीता प्रेस के अंदर एक आदमी को इस बात के लिए नौकरी दी जाती थी कि भाई तुम थोड़ी थोड़ी देर में सबको जाओ और भगवान का यह चित्र दिखाओ। हमने खुद ने देखा गीता प्रेस में, एक ही दो वो सब जगह सब ऑफिस में जाता है और जाते बस राम 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 तो बोलता, राम राम, अगला आदमी राम राम नहीं बोलेगा जब तो बोलता ही रहेगा कि राम 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 राम, चित्र दिखाया आगे निकला राम 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 राम। सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या बात? सेठ जी ने कहा देखो कि काम तो भगवान का कर ही रहे हैं, लेकिन काम के अंदर कभी कभी आदमी का चित्त इतना लीन हो जाता है कि काम के बाह्य रूप में वो डूब जाता है, उसको भगवान की स्मृति दिलाने के लिए हम ये काम करते हैं, भगवान की स्मृति दिलाओ। तो जैसे और को तनख्वाह मिलती थी ऐसे उतनी तनख्वाह उसको भी मिलती थी कि भाई तुम्हारा यही काम है, वही सबको चित्र दिखाता, अपने हाथ में चित्र ले जाता दिखाता। तो अंतिम समय का जो स्मरण होता है वो स्मरण सारे जीवन को पवित्र करने वाला होता है। तो भागवत के अंदर ये बात है, और ये भागवत है क्या कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे ओ रसिको ओ भावुको, आओ आओ सुनो सुनो। रसिक माने जिनको परमात्म तत्व के रस का चस्का लगा हुआ है, ये रसिको आओ आओ। और भावुको अर्थात परब्रह्म परमात्मा के सगुण रूप में जिनकी भावना हो चुकी है, ऐसे भावुको आओ आओ आओ, एक फल खाओ। ये भागवत रूपी फल है। कैसा फल है जी? ये भागवत रूपी फल है जो अनेक शास्त्र रूपी वृक्ष से बना हुआ बहुत पका हुआ मीठा फल है। ये फल गलितम फलम, गलित फल, गलित माने सीधे सीधे गलित माने अपन के गला हुआ, गला हुआ तो सड़ा हुआ होता है, यहाँ गलित का अर्थ है कि पक्वम फलम, पका हुआ फल, एकदम पका हुआ। गलित माने परिपक्व फल है, ये पका हुआ फल। अच्छा साहब, ये जो फल है ये पका हुआ है और मीठा है, इसकी पहचान क्या कि सुकमुखात, माने जो मीठा फल होता है उसको तोता काटता है, तोता उसी को ही काटता है जो बहुत मीठा फल होता है। सुकमुखाद अमृता द्रव संयुतम, तो ये भागवत है इसको सुखदेव जी ने कहा है। अब देखो सुखदेव नाम, यहाँ तोता और सुखदेव दोनों एक है। यहाँ तोता वही पुराना, वही तोता चला आ रहा है सुखदेव जी का रूप। तो वो तोता जो वैकुंठ में था, जो शिवलोक में था, और जो व्यास जी के यहाँ आकर के माता के पेट में आकर के और मानव जाति का उद्धार करने के लिए एक केवल बाहर से मानव बना हुआ, वो यहाँ वास्तव में तोता का तोता ही है। उसने भागवत को स्वीकार किया है, स्वीकार करने के कारण से उसने जब इस भागवत को टॉन्स लगा दी, उसने अपने मुख में भागवत को ले लिया, इसका मतलब ये पका हुआ फल है। देखो भागवत का जिस समय में सुखदेव जी ने कथन किया था ना, उस समय में कई वक्ता लोग बैठे हुए थे, वहां हमारे मैत्री जी बैठे हुए थे, ये भी भागवत बोलने वाले, नारद जी बैठे हुए, ये भी भागवत बोलने वाले, और भी कई भागवत के वक्ता थे सुखदेव जी के सामने, पर किसी ने भी सुखदेव जी की वाणी में कुछ भी कमी नहीं देखी। किसी ने कोई बीच में अलग जन से कोई ज्ञान नहीं लगाया, कोई उन्होंने पूछा नहीं, बस वो सुनते हैं बराबर। और परीक्षित जी कहीं कहीं प्रश्न कर लेते हैं, सुखदेव जी महाराज बोलते रहते हैं। तो सुखमुखाद और अमृता द्रव संयुतम, ये अमृत के रस से भरा हुआ है भागवत, रस से भरा हुआ, ऐसा रसीला ग्रंथ है कि इसमें कोई चीज फेंकने लायक है ही नहीं। हमारे बहुत से लोग तो भागवत में कुछ ऐसे अंश आते हैं जिनको यूं ही पार कर जाते हैं, क्या भाई ये स्तुति भाग है, स्तुति क्या कहना, भगवान की स्तुति हो गई, उन्होंने स्तुति की, चलो आगे। अरे भागवत में जो स्तुति प्रकरण है ये तो खास भागवत की जान है, भागवत का प्राण है ये। देखो कैसा स्तुति की, अब आगे चलो, अब यहाँ सत्संग हुआ, अब आगे चलो, रघुगण का और ये जो है जड़ भरत जी का सत्संग हुआ, खूब बातें चली, अब आगे चलो। अरे क्या बातें चली, कितनी गहरी बातें हैं। यहाँ सत्संग की बहुत बैठकें होती है भागवत में, हर बैठक में ऐसी नई नई बात आती है, एक ही सत्संग नहीं, बाहरी रूप तो एक दिखता हुआ भी कई कई नया नयापन आएगा ही। तो इस भागवत के अंदर जो रस है, उस रस के अंदर कोई भी चीज बाहर फेंकने लायक नहीं है। जैसे आम की गुठली है वो बाहर फेंकने लायक है, आम का छिलका है वो बाहर फेंकने लायक है, और कई आम सीधा ही गिर गया और उसका डंठल है तो कि वो भी फेंकने लायक है, डंठल के साथ कोई वृक्ष का पत्ता आ गया तो कि वो भी फेंकने लायक है। केवल रस ही आम का, हम केवल रस ही लेते हैं, बाकी सब चीज फेंकने लायक होती है। परंतु भागवत तो अमृता द्रव संयुतम, केवल रस ही रस है, इसमें कुछ भी कठोरता नहीं है। और एक बात है कि रस में जितना मीठापन होता है वो आम के छिलके में इतना मीठापन नहीं है। आम के छिलके को भी आप पीस लो, कर लो और अमरस के साथ मिला लो, खट्टा हो जाएगा अमरस। और गुठली को यदि करो तो कठोरता आ जाएगी। कटुता और कठोरता इनको अलग करके रस लिया जाता है, लेकिन भागवत में न कटुता मिलेगी और न भागवत में कोई कठोरता मिलेगी। ऐसे प्यार से सुखदेव जी ने ये भागवत की बात कही, ऐसे प्यार से कि भागवत जैसा भागवत ही है, बहुत प्यार से बताया है। सुखदेव जी ने तो कई बार परीक्षित को बेटा कहा, बेटा बेटा परीक्षित। क्यों कहा? कि ये सृष्टि दो प्रकार से होती है। एक सृष्टि होती है शरीरज सृष्टि, शरीर से पैदा होने वाली, माँ बाप से पैदा होने वाली, और एक सृष्टि होती है गुरु से पैदा होने वाली। गुरु से क्या कि गुरु का जो शब्द है उस शब्द का प्रभाव पड़ता है, उस शब्द का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि उस व्यक्ति के शरीर पर उसकी झलक देखी जा सकती है। अनजान आदमी बता देगा कि अमुक आदमी अमुक के पास में रहा हुआ है, ये आदमी अमुक के पास रहा हुआ, अनजान आदमी बता देगा, अनजान आदमी, क्योंकि वो गुरु के शब्दों का असर पड़ता है। कई प्रकार की दीक्षाएं होती है, दार्ष्टी दीक्षा होती है, स्मार्ती दीक्षा होती है, स्पार्शी दीक्षा होती है, मानसी दीक्षा होती है, कई दीक्षाएं होती है, जहां संत महापुरुष प्रत्यक्ष में ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को शिष्य जिस प्रकार से स्वीकार करता चला जाता है, वो एक नई सृष्टि में आया है, वो शब्द सृष्टि में, तो उस महात्मा का पुत्र हो गया, शिष्य हो गया, सिर्फ बनाने की जरूरत नहीं है, वो शिष्य हो गया। एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज आपके गुरु का नाम? कहते हमारे वो गुरु है जो हमसे ज्यादा जानते हैं। कि महाराज आपके शिष्य का नाम? कि हमारे शिष्य वो है जो हमसे कम जानते हैं। तो कहा हम तो आपसे कम जानते हैं, लेकिन हम तो आपको गुरु नहीं बनाते कि फूटे तुम्हारे, मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, चाहे तुम मानो चाहे मत मानो। विनोद भी बोले जो मुझसे ज्यादा जानते वो मेरे गुरु, जो मुझसे कम जानते वो मेरे चेला। संतों की एक सृष्टि है ये। देखो निषाद राज के पास में जब भरत जी महाराज की सेना और माताएं जब पहुंची है, तो निषाद को देखते ही वहां लोगों ने निषाद राज को लक्ष्मण जैसा समझा, गया लक्ष्मण की शकल आ रही है इसमें, लक्ष्मण की शकल आ रही है। तो निषाद राज को अब भरत जी ने भी छाती से लगाया लक्ष्मण जैसा समझ करके। माताओं ने कहा रे निषाद को देखकर लक्ष्मण की याद आती है। क्यों भाई लक्ष्मण की याद क्यों आई? कि राम जी महाराज और सीता जी सो रहे थे, उनका पहरा दे रहे थे लक्ष्मण जी और निषाद राज। उस समय में लक्ष्मण जी ने उनको ज्ञान दिया, निषाद राज ने बहुत तत्पर होकर के वो ज्ञान ले लिया। तो लक्ष्मण का भाव, लक्ष्मण का लहजा और लक्ष्मण की शकल उनमें उतरी आई। तो परीक्षित जी को कई बार सुखदेव जी ने बीच में तात कहा, बेटा, प्यार से कहा बेटा, कभी तो महाराज का हे महाराज, और कभी कहा कि ए तात, ए पुत्र। भगवान ने नारद जी को कहा कि पुत्र माँ खिद, बेटा चिंता मत करो। भगवान ने कहा नारद जी को। तो क्या है भाई, यह एक शब्द की सृष्टि है। शब्द सृष्टि में गुरु होता है वो पितृतुल्य होता है, शिष्य होता है वो पुत्रतुल्य होता है। ऐसा ये भागवत सरस संवाद है। तो मुहु रहो रसिको रसिका भुवि भावुका, ये रस है, ये आलयम पीवता है। आलयम, आलयम माने कहते हैं मोक्ष पर्यंत, मोक्ष पर्यंत नहीं, परमात्मा में लीन हो जाओ, भक्ति में डूब जाओ, तब तक इसको पीते रहो। भागवत ऐसा नहीं कि आज भागवत की कथा होगी भागवत को रख दिया, भागवत सुन ली अब रख दिया, ऐसा नहीं। आलयम पीबता है, लय पर्यंत पियो इसको, लय पर्यंत अर्थात जब तक हमारा चित्त भगवान में लीन न हो जाए। संतों ने बताया कि कैसे लीन होता है वो, कि जैसे मिश्री है वो पानी में लीन हो जाती है, घुल जाती है, ऐसे ही हमारा मन भगवान में लीन हो जाए। अब भगवान में लीन हो जाए ये भक्ति में ही हो सकता है। मैया सक्त मना पार्थ है योगम युंजन मदाश्रय है, और मैया वेशित चेतसाम, अलग अलग पद दिए गीता में भगवान ने, उनका भी स्वारस्य है। तो माने ये मन है ये मिश्री के समान, जैसे मिश्री पानी में रख दी फिर वो पानी के अंदर कैसे घुल मिल जाती है अपने आप ही, वो मिश्री इतनी बड़ी मिश्री होते ही होते 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 एकदम गलगला करके पानी और मिश्री एक हो जाती है। ऐसे आलयम पिबत है, जब तक हम भगवान में अपने आप को लीन न कर दे तब तक इसको पीते रहे पीते रहे पीते रहे। मुंह रहो, बार बार पीते रहो, क्योंकि इसका कोई अनंत नहीं, अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहते हैं नैमिषारण्य के अंदर ये लोगों के कल्याण के लिए और जो है सत्रम स्वर्गाय लोकाय। देखो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे हमारे शौनकादि ऋषि, ये स्वर्गाय लोकाय। तो स्वर्ग लोक की तो साफ ही बात है ना, स्वर्गाय लोकाय का अर्थ है स्वर्भी गीयमानाय लोकाय, माने देवता लोग भी जिसका गुणगान करते हैं ऐसे परब्रह्म परमात्मा के धाम में पहुंचने की इच्छा से उन्होंने ये एक यज्ञात्मक कर्म चालू किया। हजार वर्ष का एक यज्ञ रूप कर्म चालू किया, हम यज्ञ करेंगे हजारों वर्षों का ताकि उससे फिर आगे हमारा कल्याण हो जाए, भगवान के धाम में पहुंच जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने ये यज्ञ किया। अब वो यज्ञ कर लिया, अब यज्ञ वगैरह कर करा करके और दोपहर का जब खाली समय था, उस खाली समय में एक बार की बात है कि सूत जी उनको मिल गए। अब देखो यहां बताना क्या चाहते हैं, भागवत की महिमा, भागवत का प्रभाव, कि सूत जी महाराज वहां पहुंचे तो शौनकादिकों ने उनसे प्रश्न किया और सूत जी महाराज भी जो बता रहे हैं, सूत जी महाराज जो बता रहे हैं वो शौनकादि ऋषियों के पास ही पहुंचे। क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि वो भागवत सुनकर के आए थे, सुखदेव जी की भागवत। सूत जी महाराज खुद भागवत में बैठे थे वहां, तो सूत जी भागवत को सुनकर के इतने मस्त और आनंदित हो गए। उन्होंने विचार किया कि यहां जितने लोग बैठे, जैसे वेदव्यास जी महाराज बैठे हैं, जैसे नारद जी बैठे हैं, जैसे मैत्रेय जी बैठे हैं, अब इन्होंने तो अपना जितना काम करना था वो कर लिया, लेकिन भागवत वास्तव में जन जन तक पहुंचे इसके लिए क्या करो कि जिन्होंने भागवत नहीं सुनी है उनको भागवत सुनावे। तो सूत जी महाराज घूमते रहे कि किनको सुनावे किनको सुनावे किनको सुनावे। इस अधेड़ बुन में चलते चलते उनको, अरे नैमिषारण्य के अंदर 80,000 ऋषि मुनि और कल्याण की इच्छा से बैठे हैं, तब सूत जी महाराज वहां उनके पास पहुंचे। तब जो है उस समय में पहुंचे तो शौनकादि ऋषि आए, उनको चारों तरफ से घेर लिया, बड़ा आदर किया और आदर करते हुए वो कहने लगे कि महाराज आपने तो बहुत पुराणों का भी अध्ययन किया है, इतिहास आदियों का भी अध्ययन किया है और भगवान वादरायण ने जो जो ग्रंथ लिखे हैं वो सब आपको पता है, तो अब आप हमारे से बड़े हो तो ब्रूह ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। जो गुरु लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपने अंदर छिपाने लायक चीज को भी प्रकट कर दिया करते हैं। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत, वो कहना नहीं चाहते हैं पर उनके पास में शिष्य आता है तो शिष्य का भाव एकदम जो है खींच लेता है, उनके गुप्त भाव को बता ही देते हैं। ऐसी बातें हुई है। सेठ जी के पिताजी थे, उनके बांकुड़ा में थे सेठ जी, चूरू में थे उनके पिताजी, तो तार आया कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। तो सेठ जी तत्काल बांकुड़ा से रवाना हुए, स्टेशन पर आए तो वहां पर बात किसी ने पूछ लिया कि सेठ जी आप बताओ कि आपके पिताजी का शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। सेठ जी ने कहा कि भाई हमको तो पता नहीं और न हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं, रह जाएगा तो सेवा कर लेंगे, चला जाएगा तो भाई आके हम क्या कर सकते हैं, भगवान का जैसा विधान है। तो ऐसे करते करते एक आदमी ने बहुत चतुराई से कहा कि सेठ जी आपके पिताजी को मेरी तरफ से चरण वंदन बोल देना और उनकी तरफ से जो आशीर्वाद मिले वो आप हमको आकर के सुना देना। सेठ जी का जरूर सुनाऊंगा, सेठ जी के मुंह से निकल गया कि जरूर सुना दूंगा। तब कहा बस ठीक है, हो गया हो गया। तब सेठ जी चमके, अरे तूने तो मेरे मन की बात निकलवा ली भाई, आपके पिताजी को चरण स्पर्श बोल देना और वो जो आशीर्वाद देवे वो आकर के हमको बोल देना, तो मतलब वो रहेंगे तब ना आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद देंगे तो आप जो है हमको कहेंगे, इसका मतलब है आप जाओगे मरेंगे नहीं, और जो है आप बोल देंगे हमारे, हमको उनका आशीर्वाद हमको बता देंगे आप। श्रीनारी बड़ा होशियार निकला है। तो ये बात गुरवो गुह्य मप्युत है, जो गुरुजन होते हैं वो अपने मन की गुप्त बात भी स्नेही शिष्य के सामने, श्रद्धालु के सामने व्यक्त कर ही देते हैं। आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने अपने मन की पूरी बात बताई हो, और आज तक कोई ऐसा संत भी नहीं हुआ कि जिसने अपनी कोई बात छिपाई हो। माने जिस स्थिति में स्थित होकर के संत रहते हैं, उस स्थिति में बात करने वाला उनको आज तक कोई नहीं मिला। वो जिस स्थिति में रहते हैं, वो उस स्थिति में कौन मिले उनको, कोई बात करने वाला नहीं मिला। और वैसे संत महात्मा अपनी सब साधना की ओर की सब बात जो है वो बता के ही जाते हैं, अपना पूरा। कोई भी संत है वो संसार में अपना अधूरा काम करके नहीं जाते, वो जितना उनका काम है वो पूरा करके जाते हैं। तो कहते हैं ब्रूयुष निग्नस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युते, गुरुजन है वो छिपी हुई बात को भी, छिपाने लायक बात को भी शिष्य के सामने तो प्रकट कर ही देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आख्या ही ब्रू ही ऐसे करके छह प्रश्न किए हैं, छह प्रश्न। तो उसमें ही उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ कि मनुष्य का निश्चित कल्याण किसमें होता है। निश्चित कल्याण, निश्चित ही कल्याण होगा, ये काम कर लो सब कल्याण होगा ही होगा, एक तो ये बात बताओ। और कलयुग का समय देखते हुए बताना महाराज, मंदमति वाले हैं हम लोग, और तरह तरह के उपद्रव आ जाते हैं, आज क्या हो गया कल क्या हो गया, संसार की घटनाएं आकस्मिक इस ढंग की घट जाती है, आदमी सोचता क्या, अचानक उसको किधर का किधर ही कुछ भी किधर ही उसको प्रवृत्त होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में महाराज उसके कल्याण में बाधा न पड़े ऐसी बात बताओ। और एक बात बताओ महाराज कि भगवान वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिए, तो उनके खास वहां पर जन्म लेने का कारण क्या था। भगवान तो संसार के कल्याण के लिए ही आते हैं, और उनका कोई नाम ले लेता है विवशता से भी तो उसका कल्याण होता है, इसीलिए भगवान आते हैं ये हम जानते हैं। परंतु फिर भी महाराज उनकी कथाओं को आप कहो, उस भगवान देवकी के यहाँ वसुदेवकी के यहाँ जिस भाव से आए थे, उस भाव की कथा को आप हमें जो है विस्तार से कहो, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि बिना भगवान के चरित्र को सुने हुए होती नहीं है। क्योंकि जितना भी किसी का भी चरित्र होता है वो जो है अंग और उपांग से परिपूर्ण नहीं होता है, कहीं न कहीं कमी आती है। लेकिन एक भगवान ही ऐसे है जिनके चरित्र में कहीं कोई कमी नहीं आती, जन्म से लेकर के लीला समेटने तक भगवान की लीलाओं में कहीं पर कोई कमी नहीं आती। संत भी होते हैं भाई, संत तो साधना के बाद होते हैं ना, साधना से पहले उन संतों का जीवन तो हम लोगों जैसा ही होता है। संत कोई ऐसे थोड़े ही है कि जो पहले से ही सिद्ध होवा के आते हैं, और जो पहले से ही होवा के आते हैं वो तो कारक पुरुष कहलाते हैं। उनका एक अलग ही स्वरूप, अलग ही दुनिया, अलग ही काम, अलग ही व्यवहार, वो एक अलग पुरुष होते हैं। परंतु जो संत महात्मा हमारे अंदर से पैदा होने वाले, हमारे अंदर में ही रहने वाले, और फिर हमारे अंदर में एक महान बन जाया करते हैं, उनका भी भगवान की तरफ चलते हैं तब का जीवन उससे पहले का जीवन, इसमें एक रूपता नहीं रहती। लेकिन भगवान का तो ऐसा चरित्र होता है कि जो जन्म लेवे तब से लेकर के और लीला समेटे तब तक की लीलाओं में वैसे की वैसी दिव्यता बनी रहती है। इसलिए भगवान के लीला कथा को आप विस्तार से कहो, क्योंकि उसको सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, और सुने और सुने, क्यों, भगवान की कथा अनंत है इसलिए महाराज। और प्रत्येक पद में एक नया नया स्वाद आता है। भगवान की कथा सुनते नया नया स्वाद आता है, नया नया आनंद आता है। इसलिए आप उनकी अतिमर्त्य लीलाओं को हमको जरूर सुनाइए। हर कोई मनुष्य वैसी लीला कर नहीं सकता है, ऐसी लीलाओं को आप हमें सुनाइए। और महाराज दूसरी बात यह है कि ये कलयुग आ रहा है और बड़े जो है जोर शोर से आ रहा है और गाजे बाजे के साथ आ रहा है, डंके की चोट आ रहा है। कर लो कोई मुकाबला देखे, ऐसा हल्ला करते हुए कलयुग आ रहा है। इस कलयुग के अंदर महाराज हम लोग तो यहाँ ये जो है यज्ञ करके कलयुग से बच करके भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, ये हमने उद्देश्य बनाया है। इसी बीच में आप आ गए तो महाराज अब हम सोचते हैं कि हमारा समय भगवान में पूरा का पूरा समय भगवान में लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप ही हमको ये मार्ग दिखा सकते हो, आप हमारे कर्णधार हो। संसार रूपी सागर में हम लोग पार उलझ गए तो हमको आप अपने कृपा के नौका में बैठाकर संसार से पार कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। और एक हमारे मन के अंदर शंका है कि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम में निवास करने लगे, तब जिस धर्म की रक्षा के लिए वे आए थे वो धर्म अब जाकर के और कहां शरण को प्राप्त हुआ है, ये आप हमको बताइए। धर्म है कम शरणम गत है, धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहां जाकर के ठहरा, ये हमको बता दीजिए। तो भाई ये प्रश्न सुनकर के ये बस यही प्रश्न चाहते थे हमारे सूत जी महाराज कि कोई हमसे, अरे हमने भागवत सुखदेव जी के मुख से सुनी है, कोई हमसे अच्छा प्रश्न करे तो हम बताएं। तो इससे अच्छा कोई उनको वहां पर प्रश्न मिला नहीं था। तो सूत जी महाराज वहां आए और बड़े आनंदित होकर के अब जो है उनके प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, वो भाई अपने आधे घंटे के मध्यम विश्राम के बाद जब दूसरा सत्र अभी बैठेगा, दूसरे अपने दोबारा बैठेंगे, तब जो है वो कथा आगे कही जाएगी। जितने आप लोग कीर्तन कीजिए, जितने आप लोग कोई जो है अपना मध्यम विश्राम के अंदर होने वाला काम कर लीजिए। चलाइए।